आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर आलमी जुनूब के मामले को मजबूती से उठा रहा है। उन्होंने दौलत मुश्तरका के स्पीकरों और प्रिसाइडिंग अफसरों की कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। सुप्रीम कोर्ट ने IPAC छापों के मामले में ईडी के अफसरान के खिलाफ मगरबी बंगाल पुलिस की जानिब से दर्ज FIR पर रोक लगा दी है। उसने मगरबी बंगाल की वजीर आला, पुलिस के डायरेक्टर जनरल और दीगर के खिलाफ नोटिस जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 52 मावनवाजों ने खुद सुपुर्दगी कर दी है। यूरोपीय यूनियन के लीडर एंटोनियो लुए सेंटोस द कोस्टा और उर्सुला फैन डायर लेन 77वें यौम जमहूरिया की तकरीबात में मेहमान खसूसी होंगे। अकवाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की एक मीटिंग में आज ईरान में हुकूमत मुखालिफ एहतजाजों के खिलाफ की गई पुरतशद्दुद कार्रवाई के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सैन नई दिल्ली में इंडिया ओपन के मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत हर आलमी प्लेटफॉर्म पर आलमी जुनूब के मामले को मजबूती से उठा रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि G20 की अपनी सदारत के दौरान भी भारत ने आलमी जुनूब की तरजीहात को आलमी एजेंडे में मरकजी हैसियत दी थी। वजीर आजम नई दिल्ली में आज संविधान सदन में दौलत मुश्तरका के स्पीकरों और प्रिसाइडिंग अफसरों की कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे।
भारत हर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ग्लोबल साउथ के हितों को पूरी मजबूती से उठा रहा है। भारत का ये लगातार प्रयास है कि हम जो भी इनोवेशन करें उससे पूरे ग्लोबल साउथ को लाभ हो, कॉमनवेल्थ देशों को फायदा हो। हम ओपन सोर्स टेक प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं ताकि ग्लोबल साउथ के हमारे साथी देश भी अपने यहाँ भारत जैसी व्यवस्थाएं विकसित कर सकें।
वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी रंगारंगी को अपनी जमहूरियत की मजबूती में बदल दिया है और वो तेजी से उभरती हुई बड़ी मईशत के तौर पर उभरा है। उन्होंने कहा कि भारत में जमहूरियत का मतलब आखिरी आदमी तक पहुंचना है और हुकूमत बगैर किसी इम्तियाज के हर फर्द के लिए अवामी फलाह बहबूद के जज्बे के साथ काम कर रही है। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने साबित कर दिया है कि जमहूरी इदारे और जमहूरी अमल जमहूरियत को इस्तेहकाम, रफ्तार और बुलंदी अता करते हैं।
भारत में डेमोक्रेसी का अर्थ लास्ट माइल डिलीवरी है। हम एक लोक कल्याण की भावना से हर व्यक्ति के लिए बिना किसी भेदभाव के काम कर रहे हैं और इसी लोक कल्याण की भावना के कारण बीते कुछ वर्षों में भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं।
वजीर आजम ने कहा कि भारत में अवाम को सबसे ज्यादा अव्वलियत हासिल है और उनकी उमंगों को अव्वलीन तरजीह दी गई है। जनाब मोदी ने कहा कि आज भारत में UPI दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल अदायगी निजाम है। इस मौके पर खिताब करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मसनूई जिहानत और सोशल मीडिया ने जमहूरी इदारों की सलाहियत और इस्तेदाद को बढ़ाया है। उन्होंने मजीद कहा कि मसनूई जिहानत और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल ने कई तश्वीशनाक चैलेंज जैसे गलत इत्तलाआत, साइबर जुराइम और समाजी तकसीम को बढ़ा दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि मुसल्ला अफवाज की जिद्दत तराजी के लिए मुख्तलिफ इस्लाहात नाफिज की गई हैं। उन्होंने कहा कि किसी बड़ी तंजीम में इस तरह की तब्दीलियां चैलेंज से पुर हैं लेकिन ये जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि भारत 2047 तक दुनिया की सबसे मुस्तहकम मुसल्ला अफवाज में से एक बनने की राह पर पेशरफ्त कर रहा है। वो राजस्थान के शहर जयपुर में शौर्य दिवस प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने मुल्क की गैर मुतजलजिल खिदमत करने के लिए भारतीय फौज की सताइश की। वजीर मौसूफ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। उन्होंने जोर दिया कि अमन कायम करने की भारत की कोशिशें उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक के दहशतगर्दी की लानत को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर दिया जाता।
ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य ताकत ही नहीं दिखाई बल्कि अपने राष्ट्रीय स्वभाव का भी परिचय दिया है। साथियों, आतंकियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पूरी तरह से सोच समझकर और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखकर की गई। इसी कारण ऑपरेशन सिंदूर भारत के इतिहास में सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई के रूप में नहीं बल्कि साहस और संतुलन के प्रतीक के रूप में याद रखा जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के अफसरान के खिलाफ मगरबी बंगाल पुलिस की जानिब से दर्ज की गई एफआईआर पर रोक लगा दी है। ये एफआईआर सियासी मुशाविरती कंपनी आईपीएसी की कोलकाता में वाके इमारतों और उसके साथी बानी प्रतीक जैन की रिहायशगाह पर हाल ही में तलाशी की कार्रवाई के सिलसिले में दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन अर्जदाश्तों ने किसी मरकजी तहकीक के अमल में रियासती एजेंसियों की जानिब से मुबैना मुदाखलत पर संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं। अदालत उज़्मा ने मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी, पुलिस के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर और दीगर को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की उन अर्जदाश्तों के ताल्लुक से नोटिस जारी किए हैं जिसमें पिछले हफ्ते अंजाम दी गई तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान रखना अंदाजी का इल्जाम लगाया गया था। बेंच ने नोटिस के जवाब में हलफनामे दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है और इस मामले की समाअत के लिए अगले माह की 3 तारीख मुकर्रर की है। मगरबी बंगाल में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अफसरान के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी ने कहा कि यह मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा सदमा है। नई दिल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने इल्जाम लगाया कि मोहतरमा बनर्जी गैर कानूनियत और बद इंतजामी की एक अलामत है।
सर्वोच्च न्यायालय ने जो रोक लगाई है एफआईआर और जांच पे, एक मजबूत संदेश है कि भारत देश और सभी प्रदेश खासकर पश्चिम बंगाल कानून का राज होगा, कानून से चलेंगे, अराजकता से नहीं चलेंगे।
सेहत के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि भारत की आयुष और जड़ी बूटियों की बरामदात में 6% का इजाफा हुआ है जो 2023-24 में 649 मिलियन से बढ़कर 2024-25 में 688 मिलियन से ज्यादा हो गई। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब नड्डा ने कहा कि आयुष बरामदाती तरक्याती कौंसिल के क्याम ने भारत की रिवायती अदविया और जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल मसनूआत के लिए बैनुल अक्वामी मुतालबे में इजाफा किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तलबा को मशवरा दिया है कि वो ये याद रखें कि तालीम हुसूल माश का वसीला ही नहीं है बल्कि ये मुआशरे और मुल्क की खिदमत अंजाम देने का एक जरिया भी है। सदर जमहूरिया अमृतसर में आज गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के 50वें जलसे तकसीम असनाद से खिताब कर रही थीं। उन्होंने कहा कि तलबा उस मुआशरे के कर्जदार हैं जिसने उनकी तालीम में तआवुन किया। उन्होंने कहा कि उन अफराद को ऊपर उठाने की कोशिश करना जो तरक्की के सफर में कहीं पीछे रह गए हैं कर्ज चुकाने के तरीकों में से एक है।
ज्ञान और क्षमता का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के व्यापक हित के में करना है। ये सभी गुण आपको केवल एक अच्छा प्रोफेशनल ही नहीं बल्कि जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक भी बनाएंगे। शिक्षा केवल आजीविका का साधन नहीं है, ये समाज और राष्ट्र की सेवा करने का भी साधन है। आपकी शिक्षा में समाज का भी योगदान है जो आपके ऊपर एक ऋण है। ये ऋण आप कैसे लौटाएंगे ये आपको तय करना है।
सदर जमहूरिया ने ग्रेजुएशन में आला मकाम हासिल करने वाले कुछ तलबा बिलखसूस तालिबात को एजाजात दिए और गुरु नानक देव जी की इन तालीमात पर अमल करने के सिलसिले में यूनिवर्सिटी की सताइश की कि मुआशरे में ख्वातीन को मसावी हुकूक दिए जाने चाहिए। आज छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 52 माओनवाजों ने सिक्योरिटी फोर्सेज के सामने खुद सुपुर्दगी कर दी। इन माओनवाजों पर 1,45,00,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया गया था। खुद सुपुर्दगी करने वालों में 21 ख्वातीन माओनवाज भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ हुकूमत की बाज़ाबादकारी पॉलिसी के तहत खुद सुपुर्दगी करने वाले हर एक माओनवाज को 50,000 रुपए की माली मदद मुहैया कराई गई है। ये आकाशवाणी है। यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो लुइस सैंटोस डा कोस्टा और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला डेयर फॉन लायन इस महीने की 26 तारीख को कर्तव्य पथ पर 77वीं यौम जमहूरिया तकरीबात के मेहमान खसूसी होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दावत पर ये दोनों लीडर इस महीने की 25 तारीख से भारत के 3 रोजा सरकारी दौरे पर होंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
भारत के अपने दौरे के दौरान ये लीडर इस महीने की 27 तारीख को 16वें भारत यूरोपीय यूनियन चोटी कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत भी करेंगे। صدر کوستا اور صدر فون ڈر لین صدر جمہوریہ سے بھی ملاقات کریں گے. وہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ وفود کی سطح کی بات چیت بھی کریں گے. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت اور یورپی یونین 2004 کے بعد سے جامع شراکت دار رہے ہیں. 15ویں بھارتی یورپی یونین چوٹی کانفرنس ورچوئل طور پر 15 جولائی 2020 کو منعقد ہوئی تھی. وزارت خارجہ نے کہا کہ 77ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر یورپی یونین کے لیڈروں کی مہمان خصوصی کے طور پر شرکت اور 16ویں بھارت یورپی یونین چوٹی کانفرنس بھارت یورپی یونین جامع شراکت دار کو مزید تقویت دے گی. نیز باہمی مفاد کے ترجیحی شعبوں میں تعاون کو بڑھائے گی. آکاشوانی نیوز دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی.
اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی ایران کی صورتحال پر ایک بریفنگ کے لیے آج میٹنگ ہوگی. ملکگیر سطح پر کئی ہفتوں سے جاری احتجاج اور حکام کی طرف سے پرتشدد کاروائی کے بعد حالات اب بھی بے حد کشیدہ ہیں. یہ میٹنگ ایران کی جانب سے رات کے وقت اپنی فضائی حدود کو کچھ دیر کے لیے بند کر دینے کے بعد ہو رہی ہے، جس سے کئی بین الاقوامی ایئر لائنز کو اپنی پروازوں کا راستہ بدلنا پڑا یا انہیں منسوخ کرنا پڑا. ایران کی شہری ہوا بازی کی اتھارٹی نے آج صبح سویرے اپنی فضائی حدود کو دوبارہ کھول دیا اور ملکی نیز بین الاقوامی خدمات بتدریج بحال ہو رہی ہیں. امریکہ میں قائم حقوق انسانی کے ایک گروپ نے اطلاع دی ہے کہ ملک گیر پیمانے پر حکومت مخالف احتجاجوں کے خلاف کی گئی کارروائی میں مرنے والوں کی تعداد 2500 سے زیادہ ہو گئی ہے. ادھر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں بتایا گیا ہے کہ احتجاجوں کے خلاف ایران کی کارروائی میں ہونے والی ہلاکتوں کی شدت میں کمی آئی ہے، اور یہ کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ فی الحال بڑے پیمانے پر سزائے موت کا کوئی منصوبہ نہیں ہے. اس سے قبل صدر ٹرمپ نے مظاہرین سے کہا تھا کہ مدد جلد ہی پہنچنے والی ہے اور ان کی انتظامیہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بڑے پیمانے پر کی جانے والی ہلاکتوں کی رپورٹوں کے جواب میں مناسب کارروائی کرے گا. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ لوگوں کو پھانسی دینے کا تہران کا کوئی ارادہ نہیں ہے. پورے ایران میں بے چینی کے سبب انگلینڈ نے تہران کے اپنے سفارت خانے کو بند کر دیا اور اپنے عملے کو واپس بلا لیا، جبکہ بھارت، پولینڈ اور اٹلی نے اپنے باشندوں سے ایران چھوڑنے کو کہا ہے. بھارت نے اپنے شہریوں کو ایران کا سفر کرنے سے گریز کرنے پر سختی سے عمل کرنے کا مشورہ دیا ہے، کیونکہ وہاں سیکیورٹی کی صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے. اس دوران تہران میں بھارت کے سفارت خانے نے ایک ایڈوائزری میں کہا ہے کہ ایران میں جاری صورتحال کے مد نظر وہ بھارتی باشندے جو اس وقت وہاں موجود ہیں انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ کمرشل فلائٹ سمیت نقل و حمل کے کسی بھی دستیاب وسیلے کے ذریعے ایران چھوڑ دیں. ان میں طالب علم، زیارت کرنے والے کاروباری افراد اور سیاح شامل ہیں. تہران میں بھارتی سفارت خانے کے ایمرجنسی رابطہ ہیلپ لائن نمبر اس طرح ہیں: +989128109115، +989128109109، +989128109102. سفارت خانے سے ای میل cons.tehran@mea.gov.in کے ذریعے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے. بیڈمنٹن میں آج نئی دلی میں انڈیا اوپن میں بھارت کے لکشیہ سین مردوں کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں. لکشیہ سین نے پری کوارٹر فائنل کے میچ میں جاپان کے کینٹا نشیموٹو کو ہرایا. اس سے قبل ایچ ایس پرانو اور کدامبی شری کانت پری کوارٹر فائنل میں ہارنے کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں. خواتین کے سنگلز میں مالوکا بینسور کے چین کی کھلاڑی ہین یو سے ہارنے کے بعد بھارت کی دعویداری ختم ہو گئی ہے. خواتین پریمیئر لیگ WPL میں آج نوی ممبئی کے ڈی وائی پاٹل اسپورٹس اکیڈمی میں کھیلے جا رہے میچ میں ممبئی انڈینس نے UP واریئرز کے خلاف مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹ پر 161 رن بنائے ہیں اور UP واریئرز کو جیت کے لیے 162 رن کا نشانہ دیا ہے. آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت دنیا کے ہر پلیٹ فارم پر عالمی جنوب کے معاملے کو مضبوطی سے اٹھا رہا ہے. انہوں نے دولت مشترکہ کے اسپیکروں اور پریسائڈنگ افسروں کی کانفرنس سے خطاب کیا. سپریم کورٹ نے IPAC چھاپوں کے معاملے میں ED کے افسران کے خلاف مغربی بنگال پولیس کی جانب سے درج FIRs پر روک لگا دی ہے. اس نے مغربی بنگال کی وزیر اعلی، پولیس کے ڈائریکٹر جنرل اور دیگر کے خلاف نوٹس جاری کیے ہیں. چھتیس گڑھ کے بیجاپور ضلع میں 52 نوازوں نے خود سپردگی کر دی ہے. یورپی یونین کے لیڈر انٹونیو لوئس سینٹوس ڈا کوسٹا اور اورسولا فان ڈیر لائن 77ویں یوم جمہوریہ کی تقریبات میں مہمان خصوصی ہوں گے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.